الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم کتاب السلوک والاحسان، اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج پڑھ رہے ہیں، تسہیل بہشتی زیور کتاب سے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اصلا لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو تسہیل کی شکل میں کراچی میں ایک مدرسے نے حال ہی میں چھاپا. تو اس میں جو اخلاق ذمیمہ، یعنی جو برے اخلاق ہوتے ہیں مذمت کے قابل، ذمیمہ کا مطلب جو مذمت کے قابل اخلاق ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو ہم کیسے یعنی ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں، ان کی کیا یعنی کیا پہچان ہوتی ہے ان کی، اور ان کی کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور پھر ان کا علاج جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ موضوع ہم پڑھ رہے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے شہرت پسندی اور اس کا علاج یہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شہرت پسندی، یعنی جس کو حب جاہ بھی کہا جاتا ہے، حب جاہ یعنی اپنی جو ہے نا وہ یعنی اپنے آپ کو پہچان، یعنی ایسا کرنا کہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے جانے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے دور کے اندر یہ چیز میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا خاص طور پر، حب جاہ کو ہم کو یعنی جس کو کہتے ہیں نا عملی جامہ پہنانا، ٹھیک ہے، حب جاہ کو عملی جامہ پہنانا، یعنی باقاعدہ ایک عملی شکل دے دینا، یہ آج کے دور کے اندر بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. پہلے دور میں جس کے دل میں حب جاہ ہوتا تھا تو اس کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. پاپڑ بیلنے کا محاورہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، بہت زیادہ جو ہے نا وہ یعنی لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے اور لوگوں میں اپنی پہچان کو بڑھانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا تھا. لیکن آج کے دور میں جس کے دل کے اندر حب جاہ ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ مشہور ہو جائے، تو اس کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے سیل فون کے ذریعے سے، جس کو کہ ہمارے حضرت ہیل فون کہتے ہیں، جہنم کا فون، تو اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اپنی ویڈیو بنائے یا اپنے متعلق چیزوں کی ویڈیو بنائے اور اس کو جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ڈال دے، ایک چینل بنا کر کے یوٹیوب کے اوپر ڈال دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چند لوگوں کو بتا دے، لوگ جو ہے وہ اس کو ہٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ چونکہ فالتو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ بالکل ہی فارغ ہیں اور فون کے اوپر جو ہے وہ مستقل کے جو ہے وہ ساری کی ساری عوام لگی ہوئی ہے، تو کسی کی ویڈیو کو جس کو کہ لوگوں نے وائرل کرنا شروع کر دیا ہو تو اس کو ہٹس مل جانی، حتیٰ کہ لائکس بھی مل جانی کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ شخص جو ہے وہ آن کی آن میں مشہور ہو جاتا ہے، آن کی آن میں مشہور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس کا جو ہے وہ آپس میں تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دین کے دنیا دار لوگوں میں بھی وہ کوئی کوکنگ ویڈیو بنا لی، یا کوئی اپنی گاڑی کی ویڈیو بنا لی، یا کوئی اپنی الٹی سیدھی کسی بیوقوفی کی حرکت کر کے اس کی ویڈیو بنا کر کے ڈال دیا، تو دنیا دار معاشرے کے اندر بھی یہ بہت آسانی سے وائرل ہو جاتی ہے، اور دیندار معاشرے کے اندر بھی کوئی دینی ایکٹیویٹی، کوئی دینی ایسی چیز جو ہے وہ لا کر کے آپ نے یوٹیوب کے اوپر ڈال دی، تو وہ دینداروں کے اندر مشہور ہو جاتی ہے، کیونکہ فون کے اوپر تو سارے ہی لگے ہوئے ہیں، ہے نا، دنیا دار بھی لگے ہوئے ہیں، دیندار بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ حب جاہ کی جو بیماری ہے، یہ بہت زیادہ آج کے دور کے اندر نظر آ رہی ہے، اور اس کا इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें हम ये भी नहीं देखते कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। बस बस फोन के ऊपर हम हर वक्त इधर से उधर, उधर से इधर, फेसबुक और इस तरह के दूसरे जो सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं वो यूट्यूब के अलावा है। अब इसके बाद जो कोई सवाल हो अगर आपके ध्यान में, तो आप पूछ लीजिएगा। अगला जो मौजू है या अगला जो उनवान है वो है गुरूर और तकब्बुर और उसका इलाज। तो उसके तहत हजरत थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि गुरूर और तकब्बुर उसको कहते हैं कि आदमी अपने आप को इल्म, दीनदारी, हसब व नसब, माल व जाह और अकल वगैरह में औरों से बड़ा समझे और दूसरों को अपने से हकीर जाने, ये बड़ा गुनाह है। हदीस में है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। राई के दाने के बराबर भी, क्या राई का दाना जो है वो उस जमाने में जो चीजें लोगों को पता थी ना, उनमें सबसे छोटी साइज की चीज जो है ना वो राई का दाना होता था। ठीक है, यानी गोया कि ये राई, कुछ लोगों को ज्यादा पता होगा, ये जैसे कोई किसी किस्म की कोई दाल का जैसे दाना होता है ना, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो इतना सा भी अगर तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। दुनिया में भी लोग ऐसे आदमी से बहुत नफरत करते हैं और उसके दुश्मन बन जाते हैं। जो शख्स जो है वो तकब्बुर का इजहार करता रहता है, और जिसके अंदर तकब्बुर अंदर जब होता है तो उसका इजहार बाहर से हो ही जाता है। ठीक है, यानी ये छुपी हुई बीमारियां तो होती हैं दिल के अंदर, लेकिन तकब्बुर एक ऐसी छुपी हुई बीमारी है कि जिसका जो के छुपाए नहीं छुपती, जो छुपाए नहीं छुपती। ठीक है, तो किसी के दिल में किसी के बारे में कीना हो तो वो उसको अच्छा खासा छुपाने की कोशिश करता है और वो कर सकता है। ठीक है, आगे से पता नहीं चलने देता कि उसके दिल में किसी के बारे में कीना है। ठीक है, कभी कभी उसका इजहार होता है, लेकिन तकब्बुर एक ऐसी चीज है कि इसका इजहार जो है ना ये हो जाता है। ठीक है, इसको छुपा नहीं सकता बंदा। तो फरमाया कि फिर दूसरे लोग भी उस आदमी से बहुत नफरत करते हैं और उसके दुश्मन बन जाते हैं, अगरचे डर के मारे जाहिरी तौर पर आओ भगत करते हैं। डर के मारे आओ भगत करते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि जिसके अंदर तकब्बुर होता है ना, तो फिर वो दूसरों के ऊपर जो है ना बहुत सख्त होता है और उससे जो है ना वो नुकसान का बहुत ज्यादा अंदेशा होता है लोगों को। तो जिससे नुकसान का अंदेशा हो तो उससे तो फिर डरना ही पड़ता है। ठीक है, एक बुराई ये भी है कि ऐसा शख्स किसी की नसीहत को नहीं मानता, हक बात को किसी के कहने से कबूल नहीं करता। एक मिनट, ये वाले साहब का फोन आ रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो एक बुराई ये भी है इसकी कि ऐसा शख्स किसी की नसीहत नहीं मानता। ठीक है, कोई इसके साथ खैरख्वाही करे, खैरख्वाही क्यों की जाती है, जब कोई गलती को देखता है। ठीक है, तो उस गलती की इसलाह करना, इसी को खैरख्वाही कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर खैरख्वाही का यही यही तरीका होता है और यही खैरख्वाही की शक्ल होती है। मतलब ये कि किसी के अंदर कोई बहुत अच्छाई है। ठीक है, तो अच्छाई जो है ना वो आसानी से लोग अप्रिशिएट कर लेते हैं, उस बंदे को भी पता चल चल जाता है कि उसके अंदर ये अच्छाई है। तो उसको ये बताना कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, इसको यानी खैरख्वाही के बाब में, या इसको खैरख्वाही का नाम अमूमी तौर पर नहीं दिया जाता, क्योंकि पहले से लोगों को पता होता है और ये चीज जो है वो इंसान को खुद भी पता चल जाती है कि उसके अंदर कोई भलाई है। ठीक है, लेकिन किसी के अंदर कोई बुराई हो, किसी के अंदर कोई खामी हो, कोताही हो, जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंच रहा हो, तो उसका जो है ना उसको बता देना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती कि कोई किसी की बुराई के ऊपर उसको मुतनब्बे कर सके, उसके नुकसान को जो है वो को आइडेंटिफाई कर सके, उसको उसका आईना दिखा सके। ठीक है, तो इस वजह से गलती के इस्लाह का ही नाम दिया जाता है। खैरख्वाही जो है वो गलती की इस्लाह को ही आमतौर पर कहा जाता है। ठीक है, तो जो शख्स तकब्बुर का शिकार होता है तो वो तो उसकी तो यानी नेचर ही ये होती है कि वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता, वो तो अपने आप को ठीक समझ रहा होता है। ठीक है, तो नसीहत करने वाला तो उसके नजदीक छोटा होता है, नसीहत करने वाला बल्कि उल्टा वो गलत होता है। तो फिर किसी छोटे से या किसी गलत बंदे से अपनी गलती सुन करके जो है ना, इसको हजम नहीं होती, इसको बर्दाश्त नहीं होती। तो इस वजह से ऐसा शख्स जो है वो किसी की नसीहत को नहीं मानता है, किसी की खैर ख्वाही वाली बात को नहीं तस्लीम करता, हक बात को किसी के कहने से कबूल नहीं करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये भी है कि अगर ये किसी की लिखी हुई किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है, तकब्बुर में जो मुब्तला इंसान है ना, ये अगर किसी की लिखी हुई किताब पढ़ रहा होगा और उसके अंदर अगर इसको कोई नसीहत समझ में आ गई, पसंद आ गई, तो उसको तो वो कबूल कर लेगा या कर सकता है कम से कम, यानी पॉसिबिलिटी है कि वो किताब में लिखी हुई नसीहत को वो कबूल कर लेगा और उसकी बुनियाद पर ना अपने जिंदगी में कुछ तब्दीली वगैरह ले आएगा। ठीक है, लेकिन कोई जिंदा इंसान अगर उसको नसीहत करे ना, तो उसके ऊपर ये गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर उसको बहुत गुस्सा आएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी यानी एक अकल की खराबी भी होती है कि भाई किताब के अंदर भी तो किसी इंसान ने ही वो बातें लिखी है ना, किताब जो है वो खुद ब खुद तो नहीं लिखी जा रही होती है, खुद ब खुद तो नहीं वो पैदा हो जाती है कोई किताब, उसके अंदर नसीहत है खुद ब खुद तो नहीं आ जाती, उनके पीछे भी तो कोई इंसान ही होता है ना। तो अगर आप किताब की लिखी हुई नसीहत को कबूल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप गुस्सा नहीं हो रहे हैं, तो ये भी तो आप किसी इंसान ही की बात मान रहे हैं ना जिसने वो किताब लिखी है। ठीक है, लेकिन इसको इस बात का एहसास होता है कि भाई किताब की लिखी हुई नसीहत को अगर मैं मान भी लूंगा ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो इसके अंदर मेरी मेरी यानी मेरी कोई बेइज्जती नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं किसी जिंदा इंसान की नसीहत को सुन लूंगा और उसकी बात को मान लूंगा ना, तो मेरी उसके सामने बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो छोटा बन जाऊंगा उसके सामने, और ये उसको कबूल नहीं होता है। तो ये हमें भी सोचना चाहिए कि हम अगर हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है ना कि हमें किसी जिंदा इंसान की नसीहत बुरी लगती है, तो इसका यही वजह तो नहीं है कि हमारे अंदर भी तकब्बुर वाली बीमारी है, हमारे अंदर भी तकब्बुर वाली बीमारी है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये कितनी बुरी बीमारी है और इसका कितना बुरा अंजाम है कि जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा शख्स दाखिल ही नहीं हो सकता, जन्नत में ये शख्स दाखिल नहीं हो सकता। उसका होगा क्या कि जन्नत में दाखिल होने से पहले अगर ये ईमान वाला है, तो इसकी तकब्बुर की बीमारी को जहन्नुम की आग से जो है वो साफ किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा, जला करके उसके अंदर से खत्म किया जाएगा। जहन्नुम की आग एक ऐसी आग है जो कि सिर्फ जिस्म को नहीं जलाती, बल्कि जो ऐसी चीजें हैं ना जिनका कोई जिस्म नहीं होता, जैसे ये जो तकब्बुर की बीमारी है, ये कोई फिजिकल बॉडी इसकी नहीं है, ये नॉन टेंजिबल इनटेंजिबल किस्म की चीजें हैं, नॉन फिजिकल चीजें हैं। ठीक है, तो जहन्नुम की आग जो है वो इस तरह की नॉन फिजिकल चीजों को जलाने के भी काम आती है, फिजिकल चीजों को भी जलाने के काम आती है और नॉन फिजिकल चीजों को जलाने के भी काम आती है। ठीक है, तो जहन्नुम की आग से अपने तकब्बुर की बीमारी को दूर करने से बेहतर है कि इंसान खुद ही दुनिया के अंदर इसको मान करके अल्लाह ताला से तौबा करे और इसका इलाज करने की फिक्र में लग जाए, ताकि मरने से पहले पहले जो है वो उसके अंदर तकब्बुर की बीमारी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसी बेवकूफी की बात है कि भाई आप किसी किताब में लिखे हुए बंदे की बात तो मान रहे हैं और सामने जो आपके बंदा है उसकी बात आप नहीं मान रहे हैं। ठीक है, उमूमन घरों के अंदर ये बहुत होता है कि शौहर बीवी की और बीवी शौहर की नसीहत बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानती है ना, वही नसीहत जो है वो किताब से पढ़ेगी तो मान लेगी। ठीक है, या किसी और से किसी मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर या किसी बयान के अंदर अगर वो बात सुनेगी ना, तो वो मान लेगी। ठीक है, लेकिन अगर शौहर ने वो बात कही है तो हरगिज नहीं मानेगी। ठीक है, तो जो बयान होते हैं वो भी तो किताब ही के मानंद होते हैं, वो भी तो किसी इंसान की कही हुई बात होती है, लेकिन वो रिकॉर्डेड है। अब वो शख्स देख नहीं रहा कि आपने जो है वो उसकी बात को मान लिया है, तो आपके उसके सामने कोई बेइज्जती नहीं हो रही। ठीक है, तो इस वजह से आप उसकी बात मान रहे हैं, लेकिन सामने कोई शख्स है, वो आपको कोई बात कह रहा है, आपके खानदान का कोई फर्द है या वो है जिसको कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक दर्जा ऊंचा मकाम दिया है, उसकी बात हम नहीं मान रहे होते। ठीक है, तो तो ये कितनी बेवकूफी की बात है और कितने नुकसान की बात है, ये तकबर ही की अलामत होती है। आगे फरमाते हैं कि उसका इलाज ये है कि अपनी हकीकत में गौर करे कि मैं मिट्टी और नापाक पानी की पैदाइश हूं, सारी खूबियां अल्लाह ताला की दी हुई हैं, अगर वो चाहे तो अभी सब ले ले, फिर तकबर किस बात पर करूं। ठीक है, तकबर की नेचर क्या होती है कि जिस चीज को इंसान अपना समझता है ना, अपना जाती समझता है, उसके ऊपर तकबर करता है। ठीक है, उधार की चीज के ऊपर तकबर नहीं किया जाता, क्योंकि उधार की चीज तो ये है भाई अभी मिली है, कल मुझे इसको वापस कर देना है, तो ये मेरी जाती चीज कोई थोड़ी है, तो उधार की चीज है, इसके ऊपर तकबर कैसे करेगा बंदा। ठीक है, तो जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों को अपना जाती समझना शुरू हो जाता है ना कि बस ये मेरे पास है और ये मेरे पास से कभी खत्म नहीं होगी, या वो ये समझना शुरू हो जाता है कि ये जो मेरे पास सलाहियत है, जो अकल है, जो शक्ल है, जो माल है, जो पैसा है, जो गाड़ी है, जो घर है, जो औलाद है, ये समझना शुरू हो जाता है कि ये उसने अपनी सलाहियतों से हासिल करी है, ये उसको कोई यानी कमा करके लेकर के आया है, कोई इस मेहनत के जरिए से उसने ये चीजें हासिल करी है, वो ये नहीं देखता कि नहीं ये अल्लाह ताला ने उसको दुनिया के अंदर आजमाइश के लिए दी है, आजमाइश के लिए दी है, और ये अल्लाह ताला ही की दी हुई है, और ये किसी वक्त भी अल्लाह ताला से वापस भी लेने के ऊपर कादिर है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर तकब्बुर कैसा, तो चूंकि एक तो अपनी जाती मिल्कियत समझना शुरू हो जाते हैं, और दूसरी ये कि अपनी मेहनत से और अपनी अकल से उन चीजों को हासिल करना ये समझना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से हम तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो जो ये समझता है ना कि मेरे पास ये नेमत तो है, ठीक है, लेकिन ये मेरी जाती नहीं है और मेरी अपनी सलाहियतों से नहीं है, बल्कि फकत अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेरे मेरे गुनाहों को नजरअंदाज करके, ठीक है, मेरे ऐबों को नजरअंदाज करके अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई हुई है बस मेरे ऊपर। ठीक है, और ये बस अगर मैंने कोई ऐसी गड़बड़ कर दी कि अल्लाह ताला नाराज हो गए ना, तो ये चीज मुझसे छिन जाएगी, ऐसा शख्स पर तकब्बुर नहीं करता। ठीक है, तो फरमाते हैं कि सारी खूबियां अल्लाह ताला की दी हुई हैं, अगर वो चाहे तो अभी सब ले ले, फिर तकब्बुर किस बात पर करूं। अल्लाह ताला की बड़ाई को याद करें तो उस वक्त अपनी अपनी बड़ाई पर निगाह नहीं जाएगी, और जिसको उसने हकीर समझा है उसके सामने आजिजी आजिजी से पेश आए। ठीक है, यानी अपने आप को झुकाए ऐसे शख्स के सामने कि जिसको कि ये अपने से कमतर समझ रहा है, उसकी ताजीम किया करे, तो बड़ाई दिल से निकल जाएगी। जैसे कि एक वाकया है कि हजरत कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि दारुल देवबंद के मुहतमिम थे और हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते लगते थे ना, कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो अपने शेख के पास आए, गालबन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उनके शेख थे या हजरत खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह उनके शेख थे, जो भी उनके शेख थे उनके पास आए और उनसे उन्होंने कहा कि हजरत मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर तकब्बुर आ गया है। ठीक है, क्योंकि कम उम्र के अंदर ना उनको बहुत बड़ा मकाम और बहुत इज्जत मिल गई थी, है ना, दारुल उलूम देवबंद के जो है वो मुहतमिम बन गए थे, प्रिंसिपल, तो बहुत इज्जत मिल जाती है, तो एक इस किस्म की फीलिंग इंसान के दिल में आ जाती है, लेकिन उनको एहसास था इसका, उनको अंदाजा हो रहा था, क्योंकि नेकों के माहौल में रहते हैं ना, तो नेक लोग जो है ना फिर एक दूसरे के लिए आईने का काम भी देते रहते हैं, तो अगर किसी के अंदर कोई बुराई आ भी रही हो ना, तो वो फिर दूसरे ईमान वालों की सोहबत में रहने से उसको अपनी बुराई का एहसास हो जाता है, क्योंकि अल मोमिनो मिरातुल मोमिन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन मोमिन का आईना है। ठीक है, तो ऐसे बंदे को फिर एहसास हो जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, अब जब एहसास हो जाता है तो फिर वो उसकी फिक्र में लग जाता है कि भाई ये तो बहुत बुरी बात हो गई कि मेरे अंदर जो है वो इतनी बुरी रूहानी बीमारी आ गई, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। जैसे कि जिस्मानी तौर पर अगर आप सेहतमंद लोगों में रहते हो और आपके अंदर कोई बीमारी आ जाए, तो अब आप दूसरों के मुकाबले में मुख्तलिफ फील करेंगे ना, स्टैंड आउट फील करेंगे ना, कि भाई बाकी सारे लोग जो हैं वो तो आराम से हैं और एक मैं ही हूं जो कि छींका चला जा रहा हूं या खांसा चला जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, बाकी लोग तो नहीं खांस रहे, बाकी लोग तो नहीं छींक रहे, तो अब उसको फिक्र होगी कि इसका मतलब है कि मैं मुझे मुझे कोई बहुत मसला हो गया है, अब ये डॉक्टर के पास जाने की फिक्र करेगा, है ना। तो दूसरों को देख करके इसको एहसास हुआ अपनी बीमारी का। अगर सारे ही छींक रहे होते, अगर सारे ही खांस रहे होते जिनके साथ ये उठता बैठता है, तो ये कहता कि भाई सारे खांस रहे हैं तो मेरे अंदर कौन सी ऐसी बुराई हो गई, मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास, यहाँ तो सारे के सारे ऐसे ही हैं, तो इसका वो हो सकता है कि यही यहाँ की नॉर्म हो, सारे लोग ही खांसते और छींकते रहते होंगे, ठीक है ना, तो डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। ऐसा होगा ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता, मतलब आम मुशाहदे में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस्मानी मर्ज के बारे में हम ऐसे हैं नहीं, जिस्मानी मर्ज के बारे में तो हम बड़े कॉशियस होते हैं, लेकिन ये एक मिसाल है, ठीक है, कि अगर सारे ही छींकने खांसने वाले होंगे तो किसी को एहसास ही नहीं होगा कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सारे सेहतमंद लोग हैं और ये अकेला जो है ना वो इस किस्म की किसी तकलीफ में मुब्तला है, तो इसको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस होगी। तो इसी तरीके से कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अच्छे माहौल में थे, तो उनको जरूरत महसूस होगी, अपने शेख के पास गए यानी डॉक्टर के पास गए, उनसे कहा, तो उन्होंने फरमाया कि आप ऐसा करें कि जो मस्जिद में नमाजी आते हैं ना, तो वो अपनी जूतियां बाहर उतारते हैं, ठीक है, रैक्स में, तो बहुत सारे लोगों की जूतियां जो है ना वो रास्ते में पड़ी हुई होती हैं, रैक पे सारे लोग उठा करके नहीं रखते हैं, तो आप जो है ना वो उनकी जूतियों को सीधा कर किया करें, जूतियां सीधा किए सीधी किया करें लोगों की, ठीक है। सीधी करने का मतलब ये भी हो सकता है कि उसको उठा करके जो जूते के का मुकाम है वहां पर रख दें, या ये भी हो सकता है कि लोग जब आते हैं तो वो जो जूता उतारते हैं ना, तो वो दरवाजे की डायरेक्शन में दूर जूता रखा हुआ होता है, अब जब अंदर से वो बाहर निकल के जा रहे होते हैं तो उनको मुड़ करके अपना जूता पहनना पड़ता है, या जूते को मोड़ करके फिर उसको पहनना पड़ता है, तो अगर उस जूते को मोड़ करके इस डायरेक्शन में रख दिया जाए कि बाहर निकलने वाले लोग जो हैं वो आसानी से जूते के अंदर पैर डाल लें, तो उसको भी कहते हैं जूतियां सीधा करना, तो उनको इस काम के ऊपर लगा दिया कि आप लोगों की जूतियां सीधा सीधा क्या करें, और मस्जिद के अंदर जो लोग आते हैं वो सारे अमीर कबीर लोग नहीं होते या बड़े अजीम लोग नहीं होते, हर किस्म के लोग आते हैं ना मस्जिद के अंदर, तो इन्होंने अपने शेख के हुक्म के ऊपर वाकई ये काम शुरू कर दिया, और कुछ दिन के बाद शेख ने उनसे पूछा कि अब बताएं आपके तकब्बुर का क्या आलम है, तो फरमाने लगे कि हजरत अब तो जो है ना वो अपनी औकात समझ में आ गई है, अपनी औकात समझ में आ गई, और सारा का सारा जो वो फीलिंग महसूस हो रही थी ना वो खत्म हो गई है, पता चल गया है कि मैं तो इसी काबिल था, जूतियां सीधे करने के काबिल था, लोगों के यानी मैं तो लोगों की जूतियों के भी काबिल नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मिसाल है, आजकल जो है वो ये तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो फिर वो मरीज को देख करके और उसके हालात देख करके फिर उसको कोई इलाज बताता है, तो अब जो है ना ये कोई कहे कि अच्छा मैं भी तकब्बुर का इलाज जो है ना वो जूतियां सीधी करके करूंगा, जैसे कि ये भी किताब में एक वाकया लिखा हुआ है कि एक साहब ने जो है ना वो किताब में वाकया पढ़ा और फिर सोचने लगे कि अच्छा मैं भी यही करता हूँ, कि मैं भी लोगों की जूतियां सीधी करता हूँ, डॉक्टर के पास नहीं गए, शेख से नहीं पूछा, बल्कि खुद ही इलाज अपना तजवीज कर लिया कि जूतियां सीधी करने से मेरा तकब्बुर ठीक हो जाएगा, तो जब बाद में पता चला ना शेख साहब को कि ये तो खुद से जूतियां सीधी कर रहे हैं, तो शेख साहब ने कहा कि ये आपके तकब्बुर का इलाज नहीं है, ये आपके तकब्बुर का इलाज नहीं है, आपका तकब्बुर इससे बढ़ रहा है, बल्कि आपको तो नुकसान हो रहा है जूतियां सीधी करने से, क्यों, इसलिए कि जो सेल्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है ना, तो उससे फिर इंसान को नुकसान हो जाता है, इनको क्या नुकसान हो रहा था, इनके दिल में जो है ना वो अगली वाली बीमारी पैदा हो रही थी, तकब्बुर का इलाज करने के लिए जो इन्होंने इलाज खुद से तजवीज किया, उससे जो है ना वो दूसरी रूहानी बीमारी पैदा होनी शुरू हो गई, जिसको खुद पसंदी कहा जाता है, खुद पसंदी, ठीक है, कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना हम्बल हूं, मैं कितना डाउन टू अर्थ हूं, मैं कितना आजिज और मिस्कीन हूं, कि देखो मैं तो सारे लोगों की जूतियां सीधी कर रहा हूँ, है ना, तो एक बीमारी को खत्म करने के चक्कर में दूसरी बीमारी पैदा हो जाए और पहली बीमारी भी कहीं ना जाए, अपनी जगह पर ही रहे, तो ये क्या ख्याल है, ये फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा है, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अच्छा आगे फरमाते हैं कि अगर ज्यादा हिम्मत ना हो तो इतनी ही पाबंदी कर ले कि जब कोई छोटे दर्जे का आदमी मिले तो उसको पहले खुद सलाम कर लिया करे, इंशाअल्लाह ताला इससे भी दिल में बहुत ज्यादा आजिजी पैदा होगी, ठीक है। तो सलाम करना चूंकि ये मसनून अमल है, नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया अफशुस सलाम, है ना, कि आपस में तुम सलाम को फरोग दो, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के जो बताए हुए काम होते हैं ना, जिनको कि सुन्नत कहा जाता है या नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म कहा जाएगा, तो इनको करने से जो है ना इंसान को फायदा हो जाता है। ठीक है, तो छोटों को जो है वो सलाम करने से इंसान के अंदर फिर तकब्बुर का मर्ज जो है वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अगर दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे लवाजम या दूसरे फैक्टर्स उसके ऊपर असरअंदाज ना हो रहे हो, ठीक है, दूसरे फैक्टर्स उसके ऊपर असरअंदाज ना हो रहे हो जिनकी वजह से जो है ना वो, ये हो सकता है कि किसी दवाई का असर, दवाई तो बड़ी अच्छी है, अच्छे डॉक्टर ने वो दवाई बताई है, लेकिन उस दवाई को इस्तेमाल करने से इसको इतना फायदा नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए था। उसकी वजह क्या बनती है कि उसके जो दूसरे मामलात हैं वहां पर कुछ कुछ ना कुछ जो है ना वो गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से इस दवाई की इफेक्टिवनेस इसके ऊपर वैसी नहीं हो रही जैसे कि होनी चाहिए थी। ठीक है, तो दूसरों को सलाम करना ये भी इंसान को मुकम्मल फायदा नहीं देगा अगर जो है ना वो कोई और फैक्टर्स ऐसे उसकी जिंदगी के अंदर चल रहे हैं कि जो कि इसके इसके बेनिफिट, इस दवाई के बेनिफिट को जो है वो रोक रहे हैं। ठीक है, हमने अपने जब हम दीनदारों के माहौल में जरा आए तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इज्तिमा वगैरह में जाने का मौका मिला। तो जाहिर है फिर उसमें इशा की नमाज के बाद जो वक्त होता है सोने का, तो सारे लोग सो जाते हैं, तो सुबह के वक्त जो है ना तहज्जुद के टाइम में फिर लोग उठते हैं, और जो लोग पुराने होते हैं तो फिर वो पहले उठ जाते हैं, उनको पहले आदत होती है उठने की। ठीक है, और जो नए लोग होते हैं ना तो वो तहज्जुद के वक्त में तो खुद से तो नहीं उठ पाते। तो ऐसा अजीब जो है ना वो एक्सपीरियंस हुआ, जब पहली दफा हुआ था तो बड़ा ही अजीब था कि जो हमारे उस्ताद थे या जो हमारे शेख थे ना उस वक्त, यानी आजम जी तो खैर हमारे तो साथ तो सोने वालों में नहीं होते हैं वैसे भी, लेकिन जो उस्ताद और जो बड़े दर्जे के लोग थे वो तहज्जुद के अंदर पहले उठ गए ना, तो अब हमने देखा कि वो जो दूसरे लोगों को उठा रहे हैं ना, या खुद हमें भी जब उन्होंने उठाया तो कैसे उठाया, पैर दबाने शुरू कर दिए, यानी सोते हुओं के जो बहुत उनसे मर्तबे में मकाम में छोटे लोग थे उनके, उन्होंने आकर के पैर दबाने शुरू कर दिए। अब एकदम से इंसान जो है ना वो जब उठा और उसने देखा और मेरे उस्ताद जो है वो मेरा पैर दबा रहे हैं, एकदम हड़बड़ा करके इंसान उठता है ना, क्योंकि इतनी तो इज्जत कदर जो है वो हो चुकी होती है उनके कहने के ऊपर, दीन में आए होते हैं, दीन के चीजें सीख रहे होते हैं और यहाँ पर भी वही लेकर के आए होते हैं, अब वो शख्स जो है वो आपके पैर दबा रहा है आपको उठाने के लिए, है ना, तो ऐसी जो है ना वो, यानी तो इस तरीके से भी इंसान का तकब्बुर खत्म भी होता है, और जिनका तकब्बुर खत्म हो जाता है फिर वो अपने छोटों के पैर भी दबा रहे होते हैं, बड़ों के पैर दबाने तो होते ही हैं लेकिन छोटों के भी पैर दबा रहे होते। ठीक है जी, और कोई पॉइंट इसके अंदर रह गया या कोई सवाल हो? हाँ, एक पॉइंट लिखा हुआ था थोड़ा सा जो अभी नजर पड़ी है उसके ऊपर, कि अगर कोई अपने जैसे तकब्बुर का इलाज खुद नहीं कर रहा होता है ना, तो उसको इस बात से भी डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो फिर आजमाइशों और तकलीफों के रास्ते से मेरे तकब्बुर का इलाज करवाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला फिर अगर हालात भेज देंगे और हमसे जो है ना वो हमारी नेमतें छीन लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर अगर हमारे तकब्बुर का इलाज हो भी गया ना तो वो तो फिर बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होगी ना, बहुत ही ज्यादा यानी तकलीफ देह मामला होगा कि नेमतें अल्लाह ताला ने छीन ली जिन नेमतों के ऊपर हम तकब्बुर करते थे। ठीक है, तो हमेशा इससे डरते रहना चाहिए, और तकब्बुर का खुद ही दुआओं के जरिए से और दवाओं के जरिए से, जो हमारे मशायख ने हमें दवाएं बताई हैं, तो उनके जरिए से अपने तकब्बुर का इलाज करने की कोशिश करते रहना चाहिए। दुआ और दवा, ठीक है, यही दोनों काम हैं जो कि हर बीमारी का इलाज करने के लिए इंसान को करने होते हैं। फिर उसके बाद खुदपसंदी और उसका इलाज, ये आखिरी रूहानी बीमारी या अखलाक जमीमा हजरत ने यहाँ पे लिखा है, तो वो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि इस क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। वो आखिर दावाना अनिलहमदुल्ला रबिल आलमीन। थोड़ी ब्रेक के साथ फिर हम अगली क्लास, मिसाली सांस का टॉपिक टॉपिक चल रहा है ना, तो वो इंशाल्लाह शुरू करते हैं ब्रेक के बाद।